रात काफी हो चुकी थी। विक्रांत कमरे में आया और जैसे ही उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की, दर्द की एक तेज लहर उसके बाजू में फैल गई। वो रुक गया, फिर शांत आवाज में बोला, जेसिका प्लीज मेरी शर्ट उतारने में हेल्प कर दो। जेसिका ने उसकी तरफ देखा, उसके आवाज में कुछ भारीपन था। वो पास आई, क्यों क्या हुआ? विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। जेसिका ने उसकी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोले, जैसे ही शर्ट उसके कंधे से नीचे सरकी, वो एक पल को जड़ हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। विक्रांत की पूरी बाजू पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी, कपड़े पर लाल दाग साफ दिख रहे थे। ये क्या है विक्रांत? उसकी आवाज कांप गई। विक्रांत ने जैसे बहुत साधारण बात बता रहा हो उसी लहजे में कहा, पुलिस की गोली लगी है। जेसिका एकदम हिल गई। कैसे मतलब? पुलिस तुम्हें गोली क्यों मारेगी? ये हुआ कैसे? उसने अनजान बनते हुए कहा। विक्रांत कड़वी हंसी हंसा, जो डर से ज्यादा दर्द छुपाती थी। गोदाम पर छापा पड़ गया था, मरते मरते बचा हूं, किसी ने मुखबेरी की, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। और तुम ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मैं क्या करता हूं। जेसिका की सांसें भारी थी। थोड़ा बहुत तुम्हें जानती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सब करते हो। मुझे लगा तुमने ये सब छोड़ दिया। विक्रांत ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो जी ये सब पैसा कहाँ से आता है? उसकी आवाज में तंज भी था, सच्चाई भी। हमारी शादी हुई थी तब मेरे पास क्या था, और तुम जो पैसा अपने साथ लाई थी वो इतना तो नहीं था कि आज तक चलता रहता। वो धीरे धीरे चलने लगा, जैसे अपने शब्दों में खुद भी ज्यादा सच खोल रहा हो। मैंने बिजनेस खड़ा किया, फैक्ट्री लगाई, सोचती हो ये सब हवा से आया। वो पास आया, आंखें सख्त थीं। ये सब इन्हीं कामों से आया है। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मुखबिरी की, और तुम भी अनजान बनने का नाटक बंद करो। विक्रांत तुम्हें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये छोड़ दो प्लीज। विक्रांत की ठंडी आवाज कमरे में गूंज गई। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे घर वालों से कैसे निपटता? वो और करीब आया। वे लोग इतने पैसे वाले थे, मेरी औकात क्या थी उनके आगे? वो एक पल रुका। और तुम सोचती हो सिर्फ प्यार से सब चल जाता है? वो दूर मुड़ गया। सानवी अपने बड़े आईने के सामने खड़ी थी। हल्की सी कर्ल की हुई बालों की लट उसके गाल पर गिर रही थी, जिसे वो बार बार पीछे कर रही थी। वो एक सादा लेकिन बेहद ग्रेसफुल ड्रेस पहने हुई थी। साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा सजने की कोशिश नहीं कर रही, बस खुद जैसे है वैसे ही दिखना चाहती है। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और चल रहा था, अंदर बहुत गहरा उलझाओ, बहुत सी बातें। वो सोच में इतनी खोई हुई थी कि रिया ने उसे दो बार पुकारा, सानवी सुन रही हो? सानवी ने जैसे नींद से जाग कर कहा। हाँ, रिया ने उसकी ड्रेस ठीक करते हुए पूछा। क्या सोच रही हो, परेशान लग रही हो? सानवी ने धीरे से कहा, आज मैं आर्यन के साथ डिनर पर जा रही हूँ और मुझे उसे सब बताना है। रिया एक पल के लिए चुप रह गई, फिर धीमी आवाज में बोली, पक्का सोच लो, शायद वो बातें अब पुरानी हो चुकी हों, हो सकता है उनकी अब जरूरत ना हो। सानवी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें थोड़ी नम हुई। नहीं रिया, आज मैं उसे सब बता दूंगी, मेरा मन तभी हल्का होगा, और मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे कैसे देखता है। रिया को उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दिया। वो उसके पास बैठ गई। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। सानवी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो आंखों तक नहीं पहुंची। वो उठी, पर्स उठाया और एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा, जैसे वो खुद को हिम्मत दे रही हो। आर्यन शर्ट के बटन लगा रहा था, सफेद क्रिस्प शर्ट, ब्लैक जैकेट, वो हमेशा की तरह परफेक्ट लग रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि आज की शाम उसके लिए अलग थी, सानवी के साथ, बिना किसी तर्क, बहस, ईगो क्लैश के, सिर्फ दो लोग, एक डिनर। वो सोच रहा था कि सानवी आज कैसे तैयार होगी, कैसे दिखेगी, और खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि आज वो उसकी बात सुन भी लेगी या नहीं। जैसे ही वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया और हॉल में कदम रखा, दरवाजा खुला। सिक्योरिटी का एक आदमी तुरंत अंदर आया। सर, आपके लिए जो पार्सल आया है ये अभी का कुरियर का पार्सल है। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, इस वक्त कौन भेजता है रात को? गॉड ने सिर हिलाया, पता नहीं सर, बस अर्जेंट लिखा था और नाम भी नहीं है। आर्यन ने भौहें चढ़ाकर बॉक्स की तरफ देखा। बॉक्स छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा, बहुत इंटेंशनली पैक किया हुआ, जैसे भेजने वाले को पता हो कि ये सही हाथों तक पहुंचना चाहिए। आर्यन ने हाथ बढ़ाया, दो। गॉड ने वो पार्सल आर्यन को पकड़ा दिया। आर्यन ने बॉक्स को हाथ में घुमाया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा संदेह आया। किसने भेजा है और क्यों। उसका पूरा प्लान, उसकी पूरी इवनिंग अब थोड़ा सा रुक गया था। वो बॉक्स को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। सानवी जैसे ही बिल्डिंग का गेट पार कर बाहर आई, हल्की हवा उसके चेहरे से बाल हटा रही थी। वो सोच रही थी कि आज की रात शायद उसकी जिंदगी का सबसे भारी सच कहने का दिन होगा। उसी पल सामने सड़क पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी वही थी, आर्यन की। सानवी के कदम एक पल को रुक गए। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। तो वो मुझे लेने आया है, उसने खुद से कहा और धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और आर्यन बाहर आया, सानवी की मुस्कान वहीं जम गई। आर्यन का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, शांत, लेकिन वो शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। उसकी आंखों में ना गर्मी थी ना अपनापन, बस एक अजीब सी दूरी। सानवी ने सावधानी से कहा, मैं खुद ही आ जाती, मैंने कहा था ना आपसे, आपको लेने आने की जरूरत नहीं थी। आर्यन की आवाज बर्फ जैसी थी। मैं तुम्हें लेने नहीं आया। सानवी ठहर गई। तो? आर्यन ने मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां फोन खोलते हुए बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो कोई फैसला कर चुका हो। उसने उसकी तरफ स्क्रीन बढ़ा दी। मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूं। सानवी ने स्क्रीन पर देखा। तस्वीर, वही गोदाम वाले डॉक्यूमेंट्स की फोटो जो कृति ने ली थी। सानवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांप गए, उसकी सांसें हल्की हल्की पकड़ने लगी। आर्यन ने अगली तस्वीर खोली। यही डॉक्यूमेंट, वही पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग, सब कुछ, सब जो वो आज खुद बताने वाली थी। ये फोटो कृति के फोन से ली गई थी, सही? आर्यन ने पूछा। आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें दर्द छिपा था। फिर उसने अगला वीडियो प्ले किया। पेन ड्राइव में वही कस्टडी केस वाली फाइलें जो विक्रांत कपूर जय को बचाने के लिए कोर्ट में पेश की गई थी। आर्यन एक एक शब्द चाकू की तरह बोल रहा था। ये पेन ड्राइव आज मेरे घर कुरियर में आई है, मैंने सब अपने फोन में सेव कर लिया है। सानवी अब समझ चुकी थी, जिस सच्चाई को आज वो खुद बोलने वाली थी, वो सच्चाई आर्यन को कहीं और से मिल गई थी। आर्यन आगे बोला, ये तस्वीर मेरे घर में खींची गई थी और ये कृति ने ली थी और तुम सब जानती थी। सानवी की टांगे कांपने लगी, उसकी आंखें भर आईं, वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ सिर झुका लिया। आर्यन का गुस्सा अब दर्द में बदल रहा था। सच सच बताओ सानवी, सानवी की आवाज गले में फंसी हुई थी। हाँ, बहुत धीरे से, बहुत टूटकर, हाँ मुझे सब पता था। आर्यन ने एक कदम पीछे लिया, जैसे उसे खुद को संभालने की जरूरत हो। तुम सब जानकर भी चुप रही, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगी। मैं बोलना चाहती थी, कई बार कोशिश की, प्लीज, लेकिन आर्यन रुका नहीं। इसीलिए भाग रही थी ना मुझसे, इसीलिए मुझसे नजरें चुराती थी, क्योंकि तुम जानती थी कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। सानवी ने सिर हिलाया हिचकियों में। मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं लाना चाहती थी, मुझे डर था कि। आर्यन की आवाज अब भारी थी, आंखें लाल थीं, जैसे कोई प्रस्ताव, कोई रिश्ता, कोई भरोसा वहीं टूट गया हो। तुमने सच बताने की जगह मेरा काम छोड़ना बेहतर समझा। सानवी रोने लगी, लेकिन इस बार वो रोना माफी का नहीं, गिल्ट का नहीं, बल्कि टूटन का था।
आर्यन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन आंसू गुस्से में अटके हुए थे। तुम जिस लड़की पर मुझे लग रहा था कि मैं भरोसा कर सकता हूं, जिससे मुझे, वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, गला बंद हो गया था। तुमने एक पल में सब तोड़ दिया। सानवी ने हाथ बढ़ाया, आर्यन प्लीज, लेकिन आर्यन पीछे हट गया। मैं आज डिनर पर नहीं जा सकता, वो मुड़ा, गाड़ी में बैठा, दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी तेजी से चल पड़ी। सानवी वहीं खड़ी रह गई, आंसुओं में, टूटते हुए, बिल्कुल अकेली।